हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है हमारे नित्य चैतन्य चरितामृत क्लास में। हमने अभी तक तीन अध्यायों की चर्चा की है। पहले अध्याय जिसमें 14 श्लोक मंगलाचरण के रूप में रचना की गई है, पहला अध्याय जिसका शीर्षक है मंगलाचरण, दूसरा अध्याय उसकी भी हमने चर्चा की थी चैतन्य तत्व निरूपण, और तीसरा अध्याय हमने चर्चा की है चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारण। तो हमने देखा था कि चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए और उसके लिए आदि लीला का जो चौथा श्लोक है उसका निरूपण कविराज गोस्वामी अभी तक कर चुके हैं, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ। तो तीन बाह्य कारण थे चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के। सबसे पहला था प्रेम भक्ति का प्रचार और प्रदान करना। दूसरा कारण था बाह्य, हमने देखा था कि युग धर्म का भी समय हो गया था और युग धर्म का प्रचार करना था नाम संकीर्तन का। और तीसरा कारण था अद्वैताचार्य इनकी हुंकार, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया था कि संसार में इतने लोग पतित जीव है तो कुछ होना चाहिए उनका उद्धार का उपाय, और अब भगवान स्वयं यदि आएंगे तभी ये संभव है। इसलिए उन्होंने चैतन्य भगवान कृष्ण की उपासना की और फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये तो सब बाह्य कारण मैंने बताए, लेकिन इसके पीछे एक अंतरंग कारण भी है, वो भी सुनना चाहिए। और उसके चलते वो चौथा अध्याय शुरू करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। और कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चतुर्थ श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, पंचम श्लोकेर अर्थ शुण भक्तगण। चतुर्थ श्लोक अनर्पित चरिम चिरात वो हमने बता दिया है। तो अभी जो चौथा अध्याय हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस चौथे अध्याय इसका शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के तीन गुह्य कारण। और इसमें जो मंगलाचरण के पांचवा और छठा श्लोक इसमें कवर हो जाएगा इस अध्याय में, मंगलाचरण का पांचवा और छठा श्लोक। तो अभी पांचवा श्लोक कहने से पहले कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चतुर्थ श्लोक के अर्थ यही कैल सार प्रेम नाम प्रचारित है, यही अवतार, प्रेम नाम का प्रचार करने के लिए अवतार हुआ है, ये चतुर्थ श्लोक का सार है। और ये तो सत्य है, सत्य यही हेतु किंतु एहो बहिरंग आर एक हेतु शून आछे अंतरंग। ये तो बहिरंग कारण बताया मैंने, अब इसका आप अंतरंग कारण जो है वो आप सुनिए। तो अंतरंग कारण सुनने से पहले वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो उनके अंदर सारे अवतार होते हैं, इसलिए विष्णु भी भगवान कृष्ण के अंदर होते हैं। तो वो कहते हैं कि अतएव विष्णु तखन कृष्ण र शरीरे विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। जो विष्णु भगवान के अंदर कृष्ण के अंदर होते हैं वो असुर संहार आदि 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 का काम करते हैं, और ये संहार का कार्य जो है वो गौण होता है। कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण क्या होता है, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण तो रसिक शेखर है, प्रेम रस निर्यास कोरिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके कोरिते प्रचारन, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण एई दुई हेतु है छे इच्छर उद्गम। वो कहते हैं कि प्रेम रस का माधुर्य का आस्वादन करने के लिए और राग मार्ग की भक्ति का प्रचारण करने के लिए रसिक शेखर कृष्ण परम करुणावश जो है वो इन दो कारणों के लिए जो है वो अवतार लेते हैं। और उसी प्रकार से कृष्ण का अवतरण के बताने के पश्चात कविराज गोस्वामी अभी बताते हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बारे में। तो महाप्रभु के अवतरण के बारे में वो बताते हैं कि कृष्ण पूर्ण भगवान तो है, यही मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान युग धर्म प्रवर्तन नहे तर काम। इसी प्रकार जैसे कृष्ण को असुरों को मारने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ऐसा छोटा सा वायरस फेंक दिया तो असुर मर जाते हैं, या कोई किसी की भी देहांत हो सकती है, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भी भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता नहीं थी, वो कुछ वहां से उनकी चाबी घुमा सकते थे, उनको मार सकते थे, लेकिन उनके आने का मूल प्रयोजन जो है वो अलग होता है। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को ये युग धर्मों को स्थापन करना, उसके लिए आने की आवश्यकता नहीं है, ये तो उनका काम है ही नहीं। कोन कारणे यबे हैल अवतारे मन युग धर्म काल हैल से ही काले मिलन। उनको किसी और कारण के लिए आना था इस धरातल पर और उसी समय युग अवतार का समय हो गया था। जैसे मुझे किसी भक्तों को मिलने नहीं जाना था लेकिन मैं रास्ते से जा रहा था, वो मुझे मिल जाते हैं बीच में ही और कहते हैं मैं आपको मिलने के लिए आ रहा था, तो जाना किसी और के कारण से है, मिल गए तो बोलते अरे आप इसीलिए था। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को कुछ और कारण के लिए इस धरातल पर आना था लेकिन उसी समय अवतार का भी काम जो करना था वो उसी समय आ गया। एई मत भक्त भाव करी अंगीकार आपने आचारी भक्ति करिला प्रचार। इस प्रकार से भक्त का एक भाव उन्होंने अंगीकार किया और अपने आचरण के द्वारा उन्होंने भक्ति का जो है वो प्रचार किया। और ये भक्ति जो है वो चार भावों में की जाती है प्रमुख रूप से। हम रस जिन्हें कहते हैं दास्य सख्य वात्सल्य आरय श्रृंगार चारी प्रेम चतुर्विध भक्त ई आधार। भक्ति के जो है वो चार रस, इनके द्वारा भक्ति की जा सकती है, दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य। हम लोग जानते हैं कि पांच रस होते हैं लेकिन जो शांत रस है वो भक्ति के रसों में उसको प्रवेश नहीं दिया जाता। और यदि कविराज गोस्वामी कहते हैं तो चार रस हो गए, तटस्थ हैया मने विचार यदि करे सब रस है ते श्रृंगारे अधिक माधुरे। ये सारे रस जो है वो सख्य दास्य वात्सल्य और माधुर्य, यदि आप तटस्थ होकर यदि विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो माधुर्य रस है वो सबसे बड़ा रस है, जिसे हम लोग जो कहा ना श्रृंगार रस। लेकिन इस श्रृंगार रस को भी और एक नाम है जिसका नाम है माधुर्य। अतएव मधुर रस कही तार नाम स्वकीय परकीया भावे द्विविध संस्थान। ये माधुर्य रस जो श्रृंगार रस है उसके दो प्रकार होते हैं, एक है स्वकीय रस और दूसरा होता है परकीय रस। और ये जो रस है माधुर्य, ये केवल व्रज में ही पाया जाता है और बाकी कहीं पर इस माधुर्य रस को नहीं पाया जाता। व्रजवधु गणेर ए भावनिरवधि तार मध्य श्री राधाय भावेर अवधि। व्रज गोपियों में ये भाव प्रधान रूप से माधुर्य रस पाया जाता है और उसमें भी राधा रानी जो है वो इन सारे माधुर्य भावों की पराकाष्ठा के रूप में पाई जाती है। और अत एव से ही भाव अंगीकार करी साधी लेना निजवांछा श्री गौरांग हरि। इसलिए वो उसी राधा रानी का भाव को अंगीकार करके चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं और अपनी इच्छा को साध्य कर देते हैं। तो अभी कविराज गोस्वामी कहते हैं मूल हेतु आगे श्लोकेर कैल आभास। अभी तक जो हमने देखा वो मूल श्लोक का केवल आभास था। आभास समझते हैं, आभास यानी ये शुरुआत या उसके जैसा। तो अभी वो मूल श्लोक बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का जो अंतरंग कारण बताने वाले हैं तीन, उसके लिए ये श्लोक रचना करते हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम् चैक्यमाप्तम् राधा भाव द्युति सुवलितम् नौमि कृष्ण स्वरूपम्। कि राधा और कृष्ण इनका प्रेम जो है ये अंतरंगा शक्ति लादिनी शक्ति की अभिव्यक्ति है। यद्यपि एकात्मानव अपि भुविपुरा देह भेदम गतौतौ, ये दोनों एक ही तत्व है लेकिन दो राधा और कृष्ण कई समय से वो बने हुए हैं। आपने पहले जमाने में एक गाना सुना होगा 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। तो ये यहाँ पर 1 है एब्सोल्यूट ट्रुथ, वो 2 बन जाता है राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण दोनों फिर तद्वयम ऐक्यमाप्तम, वो दोनों फिर वापस एक बन जाते हैं। और क्या होता है चैतन्यमाख्यम प्रकटम अधुना। तो आधुनिक युग में जो आज अभी अभी चैतन्य महाप्रभु जो परम तत्व एक है वो राधा और कृष्ण दो बन जाते हैं, वही राधा और कृष्ण दो पुनः एक बन जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। अभी इस श्लोक को समझने के पहले कविराज गोस्वामी हमें राधा और कृष्ण ये तत्व समझाएंगे। और जैसे हमने कहा था कि इस तत्व समझने के लिए हमें आलस नहीं करना चाहिए। सिद्धांत बलिया चित्ते न करी आलस, इहा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत समझने के लिए कभी आलस नहीं करना चाहिए। यदि हम सिद्धांत समझ जाते हैं तो भगवान कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति और भाव दृढ़ बन जाता है, इसलिए इसको समझना चाहिए। अभी वो कहते हैं कि राधा और कृष्ण तत्व पहले समझो, उसके बाद हम लोग लीलाओं को समझ सकते हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। राधा और कृष्ण एक आत्मा है लेकिन दुई देह धरी, ये दो देह धारण करते हैं रस का आस्वादन करने के लिए। और वे रस आस्वादन हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अभी एक ही शरीर में प्रकट हुए हैं। राधिका होयन कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति लादिनी नामया हार। जो राधारानी है वो कृष्ण के प्रेम का ही रूपांतर है श्रीमती राधारानी, जिनका नाम लादिनी शक्ति है। लादिनी कराय कृष्ण आनंदास्वादन, लादिनेर द्वारा करे भक्तेर पोषण। ये लादिनी शक्ति के दो कार्य है। सबसे पहला है कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराना, और जो भक्त है उनके भक्ति का पोषण करना, ये लादिनी शक्ति का कार्य है। अभी हमें पता है कृष्ण का स्वरूप कैसा है। कृष्ण का स्वरूप है सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद पूर्ण कृष्णेर स्वरूप एक चिच्छक्ति तार धरे तीन रूप। जो भगवान कृष्ण है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो आप तीन पंक्तियों में तीन इसके गुण लिख सकते हैं, सत चित और आनंद। जो सत है उसे कहते हैं शाश्वत, चित जो है वो है ज्ञानमय, और आनंद है आनंदमय। तो ये भगवान का तीन स्वरूप है। जैसे हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वो इन तीन तत्वों से बने हुए हैं, सत चित और आनंद। और उसी प्रकार से ये जो तीन शक्तियां भगवान के स्वरूप से प्रकट होती है, तो जो सद अंश संदिनी, तो आपने जो सद लिखा है उसके सामने आप लिख सकते हैं संदिनी शक्ति है ये। तो जो भगवान की सत सत जो अंश है वो संदिनी शक्ति है, जो चित अंश है वो संवित शक्ति है संवित, और जो आनंद अंश है वो लादिनी शक्ति है। आनंद अंश लादिनी, सद अंश संधिनी, चिद अंश संवित, या रे ज्ञान करी मानी। जो 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 ज्ञान, जिसे ज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है, जो जो चित शक्ति है। तो अभी सत चित आनंद ये भगवान का स्वरूप, और उनकी तीन शक्तियां सत के लिए संदिनी, चित के लिए संवित, और आनंद के लिए लादिनी। तो राधारानी हमने देखा कि किस प्रकार से लादिनी शक्ति का विस्तारित रूप है, और जो संदिनी शक्ति है उसके सामने आप लिख सकते हैं संदिनी सार अंश शुद्ध सत्व नाम। जो संदिनी शक्ति है उसका नाम है शुद्ध सत्व। और भगवान एर सत्ता हो या यहां ते विश्राम, और संदिनी शक्ति में जो है वो भगवान की भगवत्ता निवास करती है। और जैसे हमने देखा लादिनी शक्ति श्रीमती राधारानी उसकी प्रतीकात्मक रूप है, उसी प्रकार से जो ये शुद्ध सत्व या संदिनी शक्ति है भगवान के माता पिता, उनका गृह, उनका जो शैया आसन धाम, ये सब जो है वो संदिनी शक्ति का जो है वो विकार है। और उसी प्रकार से जो भगवान का ज्ञान है वो जो है संवित शक्ति का विस्तार है। तो संवित के आगे आपने सचित और आनंद लिखा था, तो चित जो था उसके सामने आपने लिखा होगा संवित। संवित के सामने और एक लिख सकते हैं आप, भैया भगवान का ज्ञान का विस्तार होता है। मतलब भगवान कृष्ण जिस प्रकार से भगवद गीता का ज्ञान प्रकट किए वो भगवान की संवित शक्ति का विस्तारित रूप है। और जो बाकी सारे ब्रह्म ज्ञान, ये ज्ञान वो ज्ञान है, वो सारे संवित शक्ति के ही जो है वो अंश रूप है। और जो लादिनी शक्ति के बारे में हम लोग बताएं, देखिए कविराज गोस्वामी किस तरीके से भगवान की सारी अंतरंग शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं, संवित संदिनी लादिनी, उसमें लादिनी शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। और जब भी अभी हमें श्रीमती राधारानी का स्वरूप समझने के लिए समझना बहुत आवश्यक है। लादिनी, जो लादिनी शक्ति है उसका सार है प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा होती है भाव में और उस पराकाष्ठा का रूप है महाभाव। तो प्रेम का सार है भाव, भाव की पराकाष्ठा है महाभाव और श्रीमती राधा रानी जो है वो महाभाव के रूप में आती है। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठकुरानी सर्व गुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि, यह महाभाव स्वरूपा है श्रीमती राधा ठकुरानी, यह समस्त सर्व अच्छे गुण उनकी खान है और कृष्ण के कांता कांताएं मतलब कृष्ण की जो प्रियतमाएं हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है। और यदि आपको याद होगा कि हमने भगवान श्री कृष्ण के कांताएं कौन कौन सी है, इनका 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 हमने जो 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 पहला अध्याय में भगवान की शक्ति इसमें जो हमने पहले श्लोक का विस्तरण लिया था उसमें एक शक्ति उसके तीन प्रकार होते हैं हमने ये देखा था, वही वापस दोहराते हैं। कृष्ण कांता उनके तीन प्रकार होते हैं, कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर वर्जंगण रूप आर कांता गण सार श्री राधिका है ते कांता गणेर विस्तार। तो तीन कांता गण होते हैं भगवान के, सबसे पहले होते हैं वैकुंठ की लक्ष्मिया, सबसे नीचे मतलब सबसे नीचे है वैकुंठ की लक्ष्मिया, उसके दूसरे कांतागण है द्वारका की रानिया और तीसरे कांतागण होते हैं व्रज की गोपियां। तो ये तीनों कांतागण जो है वो उनमें सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी और ये सारे कांतागण श्रीमती राधा रानी के ही विस्तार अंश है। तो ये श्रीमती राधा रानी का उच्च दर्जा उच्च पोजिशन कविराज गोस्वामी सेट करते हैं पहले की वो कितनी महान है और उनकी महानता को दर्शाने के लिए बृहद गौतमीय तंत्र इसका एक श्लोक वो रेफरेंस प्रमाण देते हुए कहते हैं, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति ही सम्मोहिनी परा। तो कहते हैं कि देवी ये सर्वप्रथम कविराज गोस्वामी ने एक एक शब्द के श्लोक का विस्तार से विवरण किया है। तो देवी का अर्थ होता है ज्योतिर्मयी तथा परम सुंदरी और कृष्णमयी है ये श्रीमती राधिका। कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बाहिरे यहां यहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी ये कृष्ण तत्व से ही बनी हुई है, कृष्ण यार भीतरे बाहिरे जिनके अंदर कृष्ण है बाहर भी कृष्ण है, जैसे हम लोग नरसिम्हा प्रणाम में गाते हैं ना बहि नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, उस प्रकार से राधा रानी के स्वरूप के बारे में कहा जाता है जिनके अंदर भी कृष्ण है बाहर के कृष्ण है। कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बाहिरे यहां यहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे, जहां जहां उनके नेत्र पड़ते हैं वहां उनको कृष्ण का ही जो है वो स्मरण होता है। और उनका नाम राधिका क्यों रखा गया है, कुछ है उसके पीछे कारण? कविराज गोस्वामी कहते हैं जी हाँ, उसके पीछे भी एक कारण है, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराणे वाखने, कि कृष्ण की इच्छा को पूर्ति करना ही उनकी आराधना है इसलिए पुराणों में उनको राधिका कहा जाता है। यह राध शब्द आता है आराधना, तो राधा शब्द आता है, यह राध धातु है जिससे आराधना भी बनता है और राधा शब्द भी बनता है। तो पुराणों में उनका नाम राधिका क्यों कहा गया है, क्योंकि कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, उनकी आराधना एकमात्र है। क्या है उनकी आराधना? कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ति करना, यही उनकी एकमात्र आराधना है। इसलिए हम लोग जब भी भगवान के विग्रहों के नाम रखे जाते हैं तो उसमें पहला नाम कॉमन होता है, श्री श्री राधा मदन गोपाल, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव। तो राधा सब जगह कॉमन है, भगवान कृष्ण के नाम अलग 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 हो जाते हैं, राधा नाम बदली नहीं होता। क्यों नहीं बदली होता? क्योंकि उनका नाम उन्होंने फिक्स करके रखा है, क्योंकि उनका नाम का ही अर्थ है कि वो कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपने आप को समर्पित की हुई है, वही उनकी आराधना है, इसलिए पुराणों में उनको राधिका कहा गया है। अतएव सर्व पूज्या परम देवता सर्व पालिका सर्व जगतेर माता, सब लोगों का पालन करने वाली ये हमारी परम देवता और इन्हें जगत माता कहा जाता है, ऐसी है श्रीमती राधा रानी। जगत मोहन कृष्ण ताहर मोहिनी अतएव समस्तेर परा ठकुरानी, सारा जग को मोहित कर देते हैं भगवान कृष्ण, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन, लेकिन उनको भी मोहित करती है वो है राधिका ठकुरानी जिन्हें कहते हैं मदन मोहन मोहिनी, लेकिन ये राधा और कृष्ण हमें समझना चाहिए, ये दो अलग अलग केवल शरीर है लेकिन आत्मा रूप में ये एक है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेदना ही शास्त्र परमाण, ये दो वस्तु अलग अलग नहीं है। राधा और कृष्ण जो वो किस प्रकार से है, राधा शक्ति है और कृष्ण शक्तिमान है। इसलिए कविराज गोस्वामी एक उदाहरण देके समझाते हैं, जिस प्रकार से कस्तूरी और उसकी सुगंध ये अलग नहीं हो सकते, जिस प्रकार से अग्नि कि ज्वाला और उसका प्रकाश अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार से राधा और कृष्ण ये दोनों एक ही तत्व है, वो कभी अलग नहीं हो सकते। प्रेम भक्ति शिकायते अपने अवतरी राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी, इसलिए प्रेम भक्ति की शिक्षा प्रदान करने के लिए अवतार लेते हैं। राधा रानी का भाव और उनके शरीर की कांति अंगीकार करते हुए वो आते हैं। कौन आते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कैल अवतार, एत पंचम श्लोकेर अर्थ प्रचार। भगवान श्री कृष्ण कलयुग में चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं, ये मैंने आपको पांचवें श्लोक का अर्थ अभी समझा दिया है। अभी षष्ठ श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश, प्रथमे कहिए से श्लोकेर आभास, छठा श्लोक में आपको बतलाऊंगा, लेकिन वो बतलाने के पहले उसकी आभास मैं आपको करा देता हूं। आभास क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे दोपहर के 12 बजे का सूर्य मतलब श्लोक का अर्थ हुआ, तो सूर्य डायरेक्ट ऐसा प्रखर रूप में प्रकट नहीं होता है, सूर्य का उदय होता है सुबह 6:30 बजे पहले, धीरे 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 पहले लाल आभा आती है, फिर धीरे से सूरज ऊपर आता है, फिर धीरे धीरे उनका ऊष्मा प्रकाश बढ़ते जाता है और फिर 12 बजे का तपता हुआ सूर्य हमें दिखाई देता है। उसी प्रकार से जो श्लोक का अर्थ है, छठे श्लोक का अर्थ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो तो 12 बजे के सूरज के समान है, तो हम लोग उसे देख नहीं सकते, उसे समझ नहीं सकते। उसके लिए पहले वो सूर्य का जो उदय होता है उस समय से हमें देखना प्रारंभ करना होगा। तो वो कविराज गोस्वामी कहते कि मैं पहले आपको जो छठा श्लोक है उसकी मैं पहले आभा तो दे दूं, पहले उसका आभास तो दे दूं, समझ में तो आ जाए ये क्या प्रकाश है, फिर जाके 12 बजे का सूर्य का अर्थ हम लोग समझ सकते हैं। तो वो आभा देने के लिए पहले अभी कृष्ण कैसे रसिक शेखर है वो तत्व को स्थापित करने जा रहे हैं। पूर्व व्रजे कृष्णेर त्रिविधवयो धर्म कौमार पौगंड अर केशोर अतिमर्म, पहले जब कृष्ण अवतरित हुए थे उनके तीन जो है वो वयोधर्म है। वयोधर्म आप तीन पंक्तियों में तीन कृष्ण के वयोधर्म लिख सकते हैं। पहला है कौमार, दूसरा है पौगंड और तीसरा है कैशोर। कौमार अवस्था होती है, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के अनुसार कौमार अवस्था होती है 0 से 5 तक, पौगंड अवस्था होती है 6 से लेके 10 तक, और कैशोर अवस्था होती है 11 से लेके 15 तक, और उसके बाद यौवन अवस्था शुरू हो जाती है। तो ये तीन कृष्ण इन तीन वयों के परे कभी जाते नहीं है, कौमार पौगंड और किशोर। और उसी प्रकार से जो अलग अलग रसों में भगवान कृष्ण की भक्ति की जाती है, उन अलग अलग रसों को भगवान श्री कृष्ण ने अपने अलग अलग वयो धर्मों में सफल किया। तो सबसे पहले कविराज गोस्वामी कहते हैं जो कौमार वय है उनका 0 से 5, उसके सामने लिख सकते हैं वात्सल्य रस को उन्होंने सफल कराया, जैसे नंद और यशोदा के साथ उन्होंने लीला की, दामोदर लीला इसी उम्र में हुई थी। और जो पौगंड वय है उनका आगे की 6 से लेकर 10 तक, पौगंड वय में उन्होंने सख्य रस को सफल किया, अपने सखाओं के साथ करे स्कंद आरोहण, उनके साथ बैठ के वो खेलते थे। और जो कैशोर वय है उनका आगे का, उसमें उन्होंने अपने माधुर्य रस को सफल किया, और कैशोर वय से काम जगत सफल रासादिलीलाए तीन करीला सफल, उन्होंने सारे जगत को सफल किया क्योंकि रासलीला आदि लीलाएं उन्होंने इस उम्र में की थी, और इस लीला के द्वारा उन्होंने सारे अपने जो है वो वयों को उन्होंने सफल किया। तो इस प्रकार से अलग अलग रसों का आस्वादन भगवान श्री कृष्ण ने, हमने देखा था कल कृष्ण कब अवतरित हुए थे, द्वापर के अंत में, 28वें चतुर्युग के अंत में जो द्वापर था वहां पर कृष्ण अवतरित हुए थे। कृष्ण ने ये सारे रसों को आस्वादन करके भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं। ऐ मत पूर्वे कृष्ण रसे रसदन यद्यपि करिला रस निर्यात चरवण, सारे रसों का उन्होंने आस्वादन कर लिया, लेकिन लेकिन क्या है, तथापि नहिल तीन वांछित पुरण तहा आस्वादित यदि करिला यतन, लेकिन उनकी तीन इच्छाएं अतृप्त रह गई। अभी क्या अतृप्त रह गया, तीन वयों में अलग अलग तीन रसों का आस्वादन परिपूर्ण करके वह चले गए हैं। ऐसी कौन सी तीन इच्छाएं जो कृष्ण भी अधूरी रह गई उनकी, तहार प्रथम वांछा करिए व्याख्यान, कृष्ण कहे आमी होई रसेर निदान, उसकी मैं पहली इच्छा का भी वर्णन करता हूं। तो जो हम लोग जो अध्याय का शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के तीन प्रमुख कारण, अभी तक आभास चल रही है, छठा श्लोक अभी तक आया नहीं है, अभी 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 सूर्य का उदय होते होने जा रहा है और अभी सूर्य का थोड़ा सा प्रकाश फैल रहा है, उस श्लोक की ये आभा है, अभी तक श्लोक छठा आया नहीं है, लेकिन फिर भी ये तीन वांछाएं कृष्ण के अतृप्त कविराज गोस्वामी यहाँ पे हमें बता रहे हैं। तो उसमें से पहला कारण अभी बताया जा रहा है, तो जो श्लोक आएगा उसको मैं आपको पहले ही बता देता हूं। श्री राधा यह प्रणय महिमा, कि राधा रानी का प्रेम उसकी महानता क्या है वो कृष्ण समझे नहीं थे, वो है उनकी पहली इच्छा। प्रथम वांछा करिए व्याख्यान, कृष्ण कहे आमी होई रसेर निदान, मैं तो सारे रसों का मैं जो हूं वो मूल कारण हूं। पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेमे आमाय कराये उन्मत्त, कृष्ण सोचने लगे मैं तो पूर्ण आध्यात्मिक सत्य हूं और पूर्ण आनंद से युक्त हूं, सारे जगत को आनंद मुझसे प्राप्त होता है, लेकिन जब मैं राधा रानी को देखता हूं तो मैं उन्मत्त हो जाता हूं, ऐसा क्या चीज है। ना जानी राधार प्रेमे आचेकत बल, ये बले आमारे करे सर्वदा विवल, कि राधा रानी के प्रेम में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसको मैं नहीं जानता, जिससे वो मैं ही विवल बन जाता हूं। राधिका का जो प्रेम है वो तो गुरु के समान है, जैसे गुरु शिष्य को नचाता है उस प्रकार से मुझे भी ये नचाता है, ऐसा 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 क्या है इस प्रेम में, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। निज प्रेम आस्वादे मोर हय आह्लाद तहा ते कोटि गुण राधा प्रेमा स्वाद, वो कहते हैं कि ठीक है मुझे तो राधा रानी को देख के आनंद होता है, वो मुझे विवल करती है, लेकिन जब वो मुझे देखती है उनका आनंद मेरे आनंद से कोटि गुणा बढ़ जाता है। तो कोटि गुणा जो बढ़ जाता है, राधा प्रेम विभु यार बाड़ी ते ना ही ठाई तथापि से क्षण क्षण बाढ़ा है सदाई, ये तो विरोधाभास है, उनका प्रेम इतना गाढ़ा है और वो कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है, सब जगह फैला हुआ है, उसके विस्तार की कोई गुंजाइश ही नहीं है, फिर भी वो निरंतर बढ़ते रहता है। तो ऐसा ऐसा क्या है वो प्रेम तत्व जिसकी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, फिर भी वो निरंतर जो है वो बढ़ते ही रहता है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं और वो मुझे शायद समझना होगा, ये एक कारण है। एई एक शून आर लोबेर प्रकार स्वमाधुर्य देखी कृष्ण करे न विचार, और अभी दूसरा दूसरा बताया जाता है उसको मैं आपको श्लोक के रूप में बताऊं तो मदीय अद्भुत मधुरिमा जो पांचवें छठे श्लोक में बाद में आएगा। ये तो एक बता दिया कि राधा रानी का प्रेम की महिमा क्या है, दूसरा एक क्या है, कृष्ण ने जब स्वयं की माधुरी देखी, कृष्ण करे न विचार, कृष्ण अभी विचार करने लगे कि मेरी ऐसी कौन सी माधुरी है। अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा त्रिजगते इहर केह नाही पाय सीमा, वो कहे कि मेरी माधुरी इतनी अद्भुत और इतनी अनंत है, तीनों लोकों में इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसी मेरी माधुरी है। और यही प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली अमर माधुर्यामृत आस्वादिते सकली, और मेरी इतनी मधुरता है लेकिन मेरे मेरी मधुरता का संपूर्ण रूप से आस्वादन अकेली श्रीमती राधारानी करती है। तो ये जो राधारानी है ये एक स्वच्छ दर्पण के समान है और इसकी स्वच्छता निरंतर बढ़ती जाती है। तो स्वच्छता बढ़ जाती है, तो मेरा रूप और अच्छे से प्रकट हो जाएगा, और अच्छे से प्रकट हो जाएगा, और उसकी स्वच्छता और बढ़ रही है। इस प्रकार से दोनों के बीच में जो है वो कहते होड़ करी, दोनों के बीच में जो है वो इस प्रकार से निरंतर जो है वो प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। दर्पणाद्य देखी यदि अपन माधुरी आस्वादित होय लोभ आस्वादित नारी। यदि मैं अपने आप को आईने में देखता हूं तो मैं देखता हूं कितना सुंदर व्यक्ति है ये, चलो इसका आस्वादन करते, लेकिन मैं अपने आप का आस्वादन कैसे करूं। जैसे कोई फूल है, वो फूल यदि अपने आप को आईने में देखे, फूल कहे और देखे वाह कितना सुंदर फूल है, लेकिन वो फूल उसका आस्वादन कैसे कर सकता है। तो कोई मधुमक्खी ही होगी जो उस फूल का आस्वादन कर सकती है। फूल अपने आप को कितना भी आईने में देख ले, अपने आप का स्वयं का आस्वादन नहीं कर सकता। उसी प्रकार से कृष्ण कहते कि मेरे अंदर कुछ तो माधुरी है, मैं जब आईने में देखता हूं तो उसकी वाखन्ना करता हूं कि क्या है ये अद्भुत माधुरी, लेकिन आस्वादित नारी, लेकिन इसका तो है मैं आस्वादन कर ही नहीं सकता। विचार करे यदि आस्वादन उपाय राधिका स्वरूप है ते तबे मन धाय। यदि उसका मैं आस्वादन करने का उपाय सोचूं तो मुझे राधिका ही बनना पड़ेगा, बाकी दूसरा कुछ उपाय नहीं है, ऐसा कृष्ण सोच रहे हैं। एतद् द्वितीय हेतु कैल विवरण तृतीय हेतुर एबे सुनह लक्षण। दूसरा हेतु मैंने बता दिया क्या, कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी मधुरता है जिसका आस्वादन राधारानी कर रही है, वो मधुरता मुझे भी चखनी है, वो दूसरा कारण था। अभी कविराज गोस्वामी हमें सतर्क करते हैं, अत्यंत निगुड़ ये रसेर सिद्धांत स्वरूप गोसाई मात्र जाने न एकांत। ये जो है वो बहुत गुड़ अभी जो है वो तीसरा कारण है, लेकिन केवल स्वरूप दामोदर गोसाई अकेले इसे जान पाए और उनकी महिमा से फिर हम लोग जान सकते हैं, उनके आशीर्वाद से। गोपी गणेर प्रेमेर रूढ़ भावना विशुद्ध निर्मल प्रेम कबूना है काम। जो गोपियों का प्रेम भाव है उसका नाम है रूढ़ भाव, रूढ़ भाव कहलाता है गोपियों का प्रेम, और वो विशुद्ध निर्मल, वो विशुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है, जिसमें कुछ मल मात्र लव मात्र भी मल नहीं है। इसे कभी भी काम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग भौतिक संसार में हैं, हम लोग हमेशा काम काम के चश्मे से ही देखते हैं, तो काम के चश्मे से देखते हैं, इसलिए राधा कृष्ण की लीलाएं भी हमें काम से प्रेरित पूर्ण लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि जो गोपियां हैं उनका प्रेम, उसे रूढ़ भाव कहते हैं, और वो विशुद्ध और निर्मल है बिल्कुल। तो काम और प्रेम में अंतर क्या है, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण लौह और हेमय चे स्वरूप विलक्षण। कहते कि जिस काम और प्रेम ये दोनों विरुद्ध है, जिस प्रकार से लोहा और सोना इसमें अंतर होता है, जो लोहा है वो काम के समान है इस भौतिक संसार का, और जो प्रेम है आध्यात्मिक वो स्वर्ण के समान है। दोनों धातु ही है लेकिन दोनों में 180 डिग्रीज डिफरेंस ऐसा है। और इनकी परिभाषा क्या हो सकती है काम और प्रेम की, आत्मेंद्रिय पृथ्वीवांचा तारिवली काम कृष्णेंद्रिय पृथ्वीवांचा धरी प्रेम नाम। जो स्वयं के इंद्रियों की संतुष्टि है उसे हम लोग काम कह सकते हैं, और केवल कृष्ण के ही इंद्रियों को संतुष्ट करना उसे हम लोग प्रेम कह सकते हैं। तो ये है शुद्ध प्रेम की परिभाषा, जिसमें स्वयं के इंद्रिय तृप्ति की बिल्कुल ही जो है वो अभिलाषा नहीं रहती, और ये है गोपियों का सघाड़ प्रेम। और उसके चलते गोपियों ने क्या कुछ नहीं त्यागा है, जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रजः। तो सारे धर्मों का त्याग करो, अभी गोपियों ने कौन कौन से धर्म का त्याग किया था, लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म दुस्त्यज आर्यपथ निज परिजन स्वजने करयत ताड़न भर्त्सन सर्व त्याग करी करे कृष्णर भजन कृष्ण सुख हेतु करे प्रेमर सेवन। कितने सारे धर्मों का त्याग उन्होंने किया, यदि आप गणना करें, लोक धर्म उन्होंने सामाजिक रीतियां, वेद धर्म शास्त्रीय आदेश, देह धर्म अपने शारीरिक आवश्यकताएं, कर्म सकाम कर्म, लज्जा उन्होंने लज्जा धर्म का भी त्याग किया, धैर्य त्याग किया, शारीरिक सुख देह सुख आत्म सुख मर्म अपने इंद्रियों का वर्णाश्रम वो भी उन्होंने त्याग किया, दुस्त्यज आर्य पथ निज परिजन अपने अपने परिजनों का त्याग किया, वो दंड देंगे वो हमारी ताड़न करेंगे उसका भी उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं। सर्व त्याग करी करे कृष्ण र भजन, सब कुछ त्याग करके वो कृष्ण का भजन करती थी, और कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन, वो उसमें भी निज सुख की अभिलाषा नहीं है, उसमें भगवान श्री कृष्ण को सुख देने की उनकी एकमात्र अभिलाषा है। इहा के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्र ये नाही कोन दाग। ये जो भगवान कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है वो दृढ़ अनुराग कहलाता है। जिस प्रकार से स्वच्छ सफेद धोया हुआ वस्त्र है उसमें कुछ दाग नहीं होता है, इस प्रकार से उनका वो निर्मल शुद्ध प्रेम है। अतएव गोपीगणेर नाही काम गंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। इसलिए गोपियों में जो काम है उसका गंध मात्र भी नहीं है और केवल कृष्ण को सुख देना है, इसलिए वो कृष्ण के साथ जो है वो अपना संबंध रखती है। आत्म सुख दुखे गोपीर नाही का विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार। अपने स्वयं के सुख और दुख की उनको बिल्कुल चिंता नहीं है, केवल कृष्ण के सुख के लिए उनके शरीर और उनके मानसिक चेष्टाएं हमेशा होती रहती है। यह है उनका प्रेम और इस प्रकार से उनका गाढ़ा प्रेम है। कृष्णेर प्रतिज्ञा एक आचे पूर्व हैते ये यैचे भजे कृष्ण तारे भजे तैचे। भगवान कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जो मेरा जिस भाव से भजन करता है मैं उस भाव से उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। गीता का श्लोक 4:11 ये भगवान की प्रतिज्ञा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो जो जिस भाव में मेरा भजन करता है उसी भाव में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूं, ऐसा भगवान कृष्ण ने वचन दिया हुआ है। लेकिन ये गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि कृष्ण को अपने वचन की पूर्ति के लिए भी अभी शक्ति नहीं है। से प्रतिज्ञा भंग हैला गोपीर भजन है। गोपियों का भजन इस प्रकार से गाढ़ा है कि कृष्ण की प्रतिज्ञा भी भंग हो जाती है और कृष्ण कहते हैं गोपियों को, न पा रहे हम निरवध्य संयुजाम स्वस्वादुकृत्यम विबुधायुषा पिवा यामा भजन दुर्जरगे श्रृंखला संवृश्च तद्व प्रतियातु साधुना साधुना। श्रीमद भागवत के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का 22वां श्लोक है। कृष्ण कहते हैं कि हे गोपियों, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति इतना प्रगाढ़ है। ब्रह्मा जी के एक आयुष्य में, हमने कल गणना की थी ब्रह्मा जी का अवधि कितना होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन में नहीं, ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल में भी मैं आपको उसको आपको कुछ भेंट प्रदान करना चाहूं तो भी मैं अपने आप को असमर्थ मानता हूं। इसलिए हे गोपियों, आप जो प्रेम कर रहे हो और सेवाएं कर रहे हो उसमें ही संतुष्ट रहो। मैं आपके साधन न पा रहे हम, मैं आपके साथ आदान प्रदान नहीं कर सकता। वही कृष्ण जो गीता में कहे कि जो जिस भाव से मेरे शरण ग्रहण करता है उस भाव से मैं उसको प्रति आदान प्रदान करता हूं, अपनी प्रतिज्ञा कृष्ण यहां पर भंग करते हैं और गोपियों को कहते हैं न पा रहे हम, मैं तुम्हारा प्रेम आदान प्रदान नहीं चुकता कर सकता। इतना गाढ़ा जो है वो गोपियों का प्रेम है। ये तो प्रेम का स्वभाव हो गया। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि और एक गूढ़ भाव इसमें है। आर एक अद्भुत गोपी भावेर स्वभाव बुद्धिर गोचरण है यहाँ प्रभाव। ऐसा गुड़ भाव है कि हमारे बुद्धि के भी परे चला जाता है, जिसका प्रभाव हम लोग कभी समझ नहीं सकते। क्या है वो प्रभाव? गोपीगण करे यबे कृष्ण दर्शन सुख वांचना ही सुख होय कोटि गण। गोपियां जब कृष्ण का दर्शन करती है तब उन्हें आत्म सुख नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उनके अंदर का सुख 1000 गुना बढ़ जाता है। और जब ऐसा उनका 1000 गुना सुख बढ़ गया है, गोपी का दर्शन है कृष्ण रे ये आनंद होय तहां होयते कोटि गुण गोपी आस्वाद है। गोपियों को देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुना आनंद गोपियों को मिलता है। तो अभी गोपियों को करोड़ों गुना आनंद जब मिल जाता है तो गोपियां और आनंदित होकर उनके चेहरे प्रफुल्लित हो जाएंगे, उनके चेहरों को देखकर कृष्ण का आनंद और बढ़ जाएगा। और गोपियां सोचती है कि कृष्ण इतने आनंदित होकर उनका चेहरा प्रफुल्लित हो रहा है, हम लोग सुख दे पाए, इसके लिए उन कृष्ण को सुख दिया, इसलिए उनका आनंद और 100 गुना बढ़ता है। कृष्ण देखते हैं गोपियां इतने आनंदित और प्रफुल्लित है, उनको देख के कृष्ण और प्रफुल्लित हो जाते हैं और गोपियां देखते हैं कृष्ण प्रफुल्लित, इसलिए उनका उनकी प्रफुल्लितता और 100 गुना बढ़ जाती है। और ऐसा अनंत काल तक चलता है। कविराज गोस्वामी कहते हैं ये हम लोग हमारे ये बुद्धि के बिल्कुल परे है, हम लोग इसे समझ ही नहीं सकते।
और ये गोपियों के बारे में बताते हैं कविराज गोस्वामी, निरूपादि प्रेम यहाँ तहा ए रीति, प्रीति विषय सुखे आश्रय प्रीति, निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे से आनंदर प्रतिभक्तेर हयमह क्रोधे। कृष्ण को आनंद देने के लिए यदि मेरा आनंद बाधा बनता है तो मैं आनंद को भी दूर रखने के लिए तैयार हूं। यह है कृष्ण सेवा का जो स्तर है, ऐसा है गोपियों का। इसलिए इसके लिए हम लोग कथा जानते हैं ना, जब कृष्ण को सरदर्द हो जाता है और नारद मुनि जाते चरण धूली लेने के लिए उन भक्तों की, कृष्ण कहते कि जाओ मेरे भक्तों की चरण धूली लेके आओ। तो कृष्ण जब गोपियों के पास आते, सब भक्तों के पास जाते, बाकी कोई चरण धूली नहीं देता है, गोपियां कहती है भर भर के ये लो लेके जाओ। नारद मुनि कहते कि आपको पता है आप नरक में चली जाएंगी। तो गोपियां कहती कि एक क्षण के लिए भी कृष्ण को यदि सरदर्द दूर हो रहा है तो हम लोग अनंत काल के लिए नरक में जाने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से ये गोपियों का जो है वो प्रेम का स्वभाव है। और निष्कर्ष में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कामगंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम निर्मल उज्ज्वल शुद्ध हेन दग्ध हेम, कि काम का बिल्कुल ही गंध नहीं है, लवलेश नहीं है, यह निर्दोष उज्ज्वल एवं पिघले हुए सोने के भांति उनका प्रेम जो है वो चमकता है। ये तो हो गई सारे गोपियों का प्रेम, और जो राधिका है वो तो गोपियों की भी श्रोमणी है। सी गोपी गण मध्य उत्तमा राधिका रूपे गुणे सौभाग्य प्रेमे सर्वा अधिका। कैसी है राधिका? ये गोपी गण मध्य सबसे उत्तम है और रूप में, सद्गुणों में, सौभाग्य में, प्रेम में ये सर्वाधिका, ऐसी है राधिका। इन सब में वो सर्वश्रेष्ठ है सारे गोपियों में। और चैतन्य महाप्रभु जो है वो ऐसा राधा रानी का भाव लेके आए हैं। सी राधार भावल्ला चैतन्य अवतार युग धर्म नाम प्रेम कैल परचार। ऐसे महाप्रभु वही राधा रानी के भाव को लेके प्रकट हुए हैं और उस युग में वो भगवान के नाम का कीर्तन का उन्होंने प्रचार प्रारंभ किया है। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी कहते हैं कि षष्ठ श्लोकेर यही कैल आभास मूल श्लोकेर अर्थ सुन करिय प्रकाश। अभी तो केवल ये सूर्योदय था जो अभी तक हमने ये सुना, इतना गूढ़ रहस्य, ये तो केवल जो सूरज का, ये केवल सुबह का 7 बजे का प्रकाश था। अभी तो आपको सूरज देखना बाकी है, कविराज गोस्वामी कहते हैं। और अभी वो आभास देने के पश्चात अभी 6ठा श्लोक मंगलाचरण का वो बताते हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के 3 कारण छिपे हुए हैं। श्री राधा यह प्रणय महिमा कीदृशो वा नैवा, स्वाद्यो येनाद्भूत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः, सौख्यम चास्या मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात, तद्भावाढ्य समजनी शची गर्भ सिंधौ हरिन्दुः। कि 3 कारण यहाँ पे बताए गए हैं, जो हमने 3 कारण अभी भी पीछे देखे थे। सबसे पहला है श्री राधा यह प्रणय महिमा, कि राधा रानी का प्रेम कितना महान है वो समझने के लिए। दूसरा, स्वाद्यो येनाद्भूत मधुरिमा किदृशो वा मदीह, मेरे अंदर ऐसी कौन सी मधुरता है जो राधा रानी को आकर्षित करती है। और तीसरा, सौख्यम चास्या मद अनुभवतः, कि इस रस का आस्वादन करने के पश्चात श्रीमती राधा रानी को कौन सा आनंद, कौन सा सुख मिलता है, वो सुख अनुभव करने की अभिलाषा, ये है 3रा कारण। ये सब सिद्धांत गुण कहिते ना युयाय, ना कहिले केह इहार अंत नाही पाए। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये सब सिद्धांत कहिए ना युयाय, ये सब सारे सिद्धांत ये जनसामान्य के सामने प्रकट नहीं करने चाहिए, लेकिन यदि प्रकट नहीं करेंगे तो कोई इन्हें समझ भी नहीं पाएगा, इसलिए मैं बता देता हूं। अतएव कही किंचु करिया निगुण, बुझी बे रसिक भक्त ना बुझी बे मूढ़। मैं कह तो दूंगा, इसलिए मैं उन सारे रहस्यों को प्रकट करूंगा, लेकिन जो रसिक भक्त है वही समझ पाएंगे, जो मूर्ख है वो इसे नहीं समझ सकते, ऐसा कविराज गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं। तो जब कृष्ण हमने देखा था आभास में भी देखा था, कृष्ण वापस चले गए जब अंतर्धान हो गए, तब उनके मन में विचार आया कविराज गोस्वामी वो तो आभास के रूप में थे, वो सूरज के कोमल किरण थे, अभी सूरज के प्रखर करण के रूप में वही कृष्ण के विचार अभी प्रस्तुत करते हैं। क्या आया कृष्ण के मन में? कृष्णेर विचार एक आछय अंतरे पूर्णानंद पूर्ण रूप रस रूपक को है मोरे। सारी भगवान कृष्ण के मन में विचार आया कि सारी दुनिया कहती है कि मैं आनंद तथा सारे रसों में पूर्ण हूं, रसो वही सह ऐसा कहा जाता है, सारे रसों में सारे आनंद में मैं परिपूर्ण हूं। आमा हैते आनंदित होय त्रिभुवन, आमा के आनंद दिबे आइछे कोन जन, कि मेरी वजह से सारा संसार आनंद प्राप्त कर सकता है, मुझे आनंद देने वाला कौन है? ऐसा कोई है माइकलाल जो मुझे आनंद दे सके? अमा हैते गुणी बड़ जगते असंभव, एकली राधा ते ताहा कोरी अनुभव, कि मुझसे अधिक गुणवान व्यक्ति इस जगत में खोज कर पाना असंभव है, किंतु एकमात्र श्री राधा रानी है जो मुझे आनंद प्रदान कर सकती है। कोटि काम जीनी रूप यद्यपि आमार, असमोर्ध्व माधुर्य साम्य नाही यार, मोर रूपे अप्यायित होय त्रिभुवन, राधार दर्शने मोर जुड़ाय नयन। कविराज गोस्वामी बताते हैं कृष्ण के मनोभाव को, कि कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि मेरा सौंदर्य जो है वो करोड़ों कामदेवों को भी पराजित करने वाला है, अतुलनीय है, अद्वितीय है और तीनों जगत को आनंद प्रदान करने वाला है, किंतु राधा रानी के दर्शन से मुझे आनंद प्राप्त होता है। भाई मेरी वंशी इस प्रकार से है कि ब्रह्मा शिव जी सबको आकर्षित कर देती है, ऐसी मेरी वंशी की शक्ति है। मोर वंशी गीते आकर्षये त्रिभुवन, राधार वचने हरे आमर श्रवण। मेरी वंशी से सारा त्रिभुवन आकर्षित हो जाता है, लेकिन जब राधा रानी के वचन मैं सुनता हूं तब मेरे कान आकर्षित हो जाते हैं उसकी तरफ। ऐसा जो है वो उनका स्वभाव है। इस प्रकार से वो कहते हैं कि एई मत जग तेरा सुखे आमी हेतु, राधिकार रूप गुण आमर जीवातु। यद्यपि संपूर्ण जगत के सुख का उद्गम स्थान मैं ही हूं, किंतु राधिका के सौंदर्य और गुण जो है वो मेरे जीवन और आत्मा है, ऐसा उनका सौंदर्य और ऐसे उनके गुण है। सारी दुनिया मेरा दर्शन करना चाहती है, लेकिन मेरी आंखें श्रीमती राधा रानी का दर्शन करना चाहती है। राधा दर्शने मोर जुड़ाया नयन, अमर दर्शने राधा सुखे आगे यान। मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं राधा रानी का, ताकि मुझे आनंद मिले। लेकिन वह कहते हैं कि जब मैं राधा रानी को, राधा रानी के प्रति दृष्टि डालता हूं, तो राधा रानी जो तो मुझे आनंद तो उसकी तृप्ति तो होती है, लेकिन जब राधा रानी मुझे देखती है, राधा रानी को कोटि गुण उससे अधिक आनंद प्राप्त हो जाता है। ऐसी है उनकी महिमा। ये तो विरोधाभास हुआ, सारे जगत को मैं आनंद प्रदान करता हूं, वो मुझे आनंद प्रदान करती है, और उनको 100 गुण आनंद अधिक हो जाता है जब मैं आनंद हो जाता हूं। ये भाई कौन सी दुनिया की रीत है? ताते जानी मोते आछे कोन एक रस, आमर मोहिनी राधा तारे कोरे वश। यह विचार करने पर मैं समझ सकता हूं कि मुझ में कोई अज्ञात रस है। क्या करे भगवान कृष्ण, आप समझ गए कि सारे जगत के लिए आनंद का सागर खण, आनंद की खण मैं हूं। मेरे लिए आनंद की स्रोत है राधा रानी, लेकिन राधा रानी को मेरे से भी 100 गुना अधिक आनंद होता है। इसका अर्थ है मेरे अंदर कुछ तो है। समझ में आ रहा है? मेरे अंदर कुछ तो है। विचार करने पर समझ में आ जाता है कि आछे कौन एक रस, मेरे अंदर ऐसा कुछ एक रस है जिससे कारण मुझे राधा रानी मोहित कर लेती है और उसके प्रेम में मैं वश हो जाता हूं। अमा है ते राधा पाई ये जातीय सुख, तहा आस्वादिते आमी सदाई उन्मुख। तो ये दूसरी इच्छा कृष्ण के अंदर जागृत हो जाती है। क्या है वो इच्छा? दूसरी इच्छा कि मैं सदैव उस सुख का आस्वादन कर, जो राधा रानी को जो सुख मिलता है मुझे देखने के पश्चात, वो सुख का आस्वादन मैं करना चाहता हूं। तो ये जो तीसरी इच्छा भगवान के अंदर आ गई, ए तीन तृष्णा मोरा नाहिल पुरण विजातिया भावे न है तहा आस्वादन। ये जो तीन मेरे अंदर इच्छाएं जागृत हुई है, कौन सी है तीन इच्छाएं? सबसे पहले राधारानी की प्रेम की महिमा क्या है, दूसरी इच्छा है कि मेरे अंदर ऐसा कुछ रस है जो राधारानी को आस्वादन कराता है, और तीसरी वो रस का आस्वादन करने के बाद राधारानी को जो सुख प्राप्त होता है वो सुख क्या चीज है वो मैं चखना चाहता हूं। तो ये कृष्ण कहते हैं कि विजातिया भावे न है ताहे आस्वादन, मैं स्वयं कितना भी चखने का प्रयास करूं मेरे रस को मैं चख नहीं सकता। मुझे यदि यदि जैसे हमने फूल का उदाहरण दिया था, फूल अपने आप की मधुरिमा जानने के लिए उसे मधुमक्खी ही बनना होगा, उसी प्रकार से कृष्ण कहते हैं कि राधिकार भाव कांति अंगकार अंगीकार विने से तीन सुख कबू नहे आस्वादने। वो कहते हैं कि राधारानी का भाव और उनकी कांति लेके जब तक मैं नहीं जाऊंगा, जब तक इसका स्वीकार नहीं करूंगा, तब तक मेरी ये तीन इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसा कृष्ण के मन में विचार चल रहा है कि मुझे अभी राधारानी का भाव लेके प्रकट होना ही होगा, ऐसा कृष्ण निश्चय करते हैं, तब जाके मेरी ये तीन इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। सर्व भाव कैले कृष्ण एत निश्चय हेन काले आईला युगाव तार समय। ऐसी कृष्ण ने निश्चय कर ही लिया कि अभी मैं इन तीन इच्छाओं को पूर्त करने के लिए राधारानी का भाव और कांति लेके प्रकट हो ही जाऊंगा, उसी समय युगावतार का समय हो गया। लो कर लो बात, उसी समय युगावतार का भी समय हो गया। तो अभी क्या, युगावतार का समय तो हो ही गया, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, से काले श्री अद्वैत करे न आराधन तहार हुंकारे कैले कृष्णे आकर्षण। उसी समय धरातल पर सारा जग कोई पाप में लगा हुआ था, कोई पुण्य में लगा हुआ था, उनको देख के अद्वैताचार्य मन इनका करुणा से उद्विग्न हो गया था, और अद्वैताचार्य ने तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेण वा, कल हमने देखा कि किस प्रकार से अद्वैताचार्य ने अपने शालिग्राम का अभिषेक किया, सिंचित किया, और अपनी भक्ति के द्वारा उन्होंने हुंकार दी और भगवान कृष्ण को वह आकर्षित करना चाहते थे। अभी देखिए कविराज गोस्वामी कौन सा रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं हमारे सामने कि कृष्ण के मनोभाव, जैसे हमने कहा कि जो भगवद गीता है वो भगवान की वाणी है, श्रीमद भागवत ये भगवान के क्रियाकलाप है, वो देख के समझ सकते हैं, लेकिन चैतन्य चरितामृत ऐसा ग्रंथ है जो भगवान के मनोभाव हमारे सामने प्रकट कर सकता है। तो कविराज गोस्वामी कहते कि कृष्ण के मन में ये तीन अतृप्त इच्छाएं थी, और इन अतृप्त इच्छाओं को पूर्ति करने का निश्चय उन्होंने कर लिया, और उसी समय दो चीजें हुई। क्या हुआ, उसी समय युगावतार का भी समय हो गया, और उसी समय अद्वैताचार्य ने भी कृष्ण को बुलाया था, भाई आप ही आइए और संकीर्तन का प्रचार कीजिए। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, पिता माता गुरु अण आगे अवतरी राधिकार भाववर्ण अंगीकार करी। अपने गुरु, अपनी माता शची माता जगन्नाथ मिश्रा और गुरुवर्ग उनके ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी सबको आगे अवतरी, उनको सबको आगे भेज दिया, और राधिकार भाव वर्ण अंगीकार करी। राधिका का भाव और उनका वर्ण उन्होंने अंगीकार किया। नवद्वीपे शची गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु तहाते प्रकट हैला कृष्ण पूर्ण इंदु। जिस प्रकार से समंदर के उस ओर से पूर्ण चंद्रमा प्रकट होता है, इसी प्रकार से कृष्ण पूर्ण इंदु, ये भगवान श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा, वो शचि गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु, जो शचि गर्भ में उस प्रकार से नवद्वीप में भगवान कृष्ण राधारानी का भाव और राधारानी का कांति लेके प्रकट होते हैं। नवद्वीपे शचि गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु तहाते प्रकट हैला कृष्ण पूर्ण इंदु। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और ये तीन जो है वो उनके अवतरण के अंतरंग कारण कविराज गोस्वामी सारी दुनिया के सामने उद्घाटित करते हैं। और निष्कर्ष में कविराज गोस्वामी इस अध्याय के आखिर में कहते हैं, मंगलाचरणम कृष्ण चैतन्य तत्व लक्षणम प्रयोजनम चावतारे श्लोक षट्कैर्निरूपितम्।
तो जो मंगलाचरण में 14 श्लोक बताए हैं, हमने देखा था आपको यदि याद है 14 श्लोकों का विभाजन कैसा है, 14 श्लोक मंगलाचरण, उसमें पहले 6 श्लोकों में चैतन्य तत्व का निरूपण है, आगे वाले 5 श्लोकों में नित्यानंद तत्व का निरूपण है, 6 और 5 हो जाते हैं 11, उसके बाद 2 श्लोकों में अद्वैत तत्व निरूपण है, 11 और 2 होते हैं 13, और 14वां और आखिरी श्लोक में पंच तत्व का निरूपण है। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी यहां पर हमें वापस लेके जाके बता रहे हैं कि मंगलाचरण कृष्ण चैतन्य तत्व लक्षणम, कि मंगलाचरण में जो है अभी तक मतलब शतकाय निरूपितम 6 श्लोकों की मैंने चर्चा की है, तो 6 श्लोकों में मैंने अभी चैतन्य तत्व का जो है वो चैतन्य तत्व लक्षणम, चैतन्य तत्व क्या है वो लक्षण बताया है, और प्रयोजनम अवतारे च, और उनके अवतार का प्रयोजन क्या है वो मैंने अभी तक 6 श्लोकों में बताया है। और इस प्रकार से हमारे 4 अध्याय और मंगलाचरण के 6 श्लोक पूर्ण हो जाते हैं। पहला अध्याय का शीर्षक है मंगलाचरण, दूसरे अध्याय का शीर्षक है चैतन्य तत्व निरूपण, तीसरा अध्याय का शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के 3 बाह्य कारण, और चौथा अध्याय अभी हमने देखा चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के 3 गुह्य कारण। इस प्रकार से हमारे मंगलाचरण के 6 श्लोक चैतन्य अवतरण और उनका प्रयोजन और चैतन्य तत्व पूरा हो जाता है। और अभी जो अगले 5 श्लोक है उसमें 5वां अध्याय आएगा, उसका शीर्षक रहेगा नित्यानंद तत्व निरूपण, और उसका निरूपण हम लोग हमारे कल के सत्र में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।